This is the University of Cambridge Local Examinations Syndicate International General Certificate of Secondary Education, November 2017, Examination in Hindi as a Second Language. Paper 2, Listening Comprehension. Turn over now.
अभ्यास एक, प्रश्न एक से छः. प्रश्न एक से छः के लिए आप क्रमानुसार कुछ संक्षिप्त संवाद सुनेंगे. उनके आधार पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई रेखा पर लिखिए. आपके उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त होने चाहिए. आपको प्रत्येक संवाद दो बार सुनाया जाएगा. संवाद एक.
यात्री कृपया ध्यान दें, जाने की दिशा में गाड़ी का पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है. पुरुष यात्रियों से अनुरोध है कि इसमें प्रवेश न करें. ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है. कृपया गाड़ी के फर्श पर न बैठें. अगला स्टॉप गांधीधाम है. दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे. कृपया सावधानी से उतरें.
संवाद दो.
विमला जी, आपने सविता को देखा है क्या?
भाई साहब, मजाक के मूड में हैं क्या? मैं तो सविता को बरसों से देखती आ रही हूँ. आप जानते हैं कि हम दोनों सहेलियां हैं.
इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी सहेली है कहाँ?
अंदर घर में होगी. अभी 20 मिनट पहले ही तो मैंने वहाँ छोड़ा है उसे.
घर में होती तो मैं आपसे पूछने क्यों आता?
अरे हाँ, मेरे जाने के बाद ऊपर के फ्लैट में माया के पास गई होगी, उनका नया टीवी देखने.
संवाद तीन.
साथियों, आज हमें अवस्थी जी की पुस्तक का काम पूरा करना है. सारे काम छोड़कर सब इस पर लग जाएं. राघव जी की टीम प्रूफ रीडिंग का काम देखेगी. रेणु जी, आप आवरण पृष्ठ का काम पूरा करा दें. अहमद साहब फुटनोट और संदर्भ सूची को तैयार करेंगे. हमारे पास शाम 5 बजे तक का समय है, क्योंकि अवस्थी जी छपाई के लिए तैयार पुस्तक देखने के लिए 6 बजे आ रहे हैं.
संवाद चार.
नमस्ते भाई साहब, नीलिमा जी से मिलना था.
समय ले रखा है आपने? क्या नाम है आपका?
जी रुचिका. 4 बजे का समय है. मेरे साथ मेरी एक सहेली भी है.
किस सिलसिले में मिलना है आपको? सरकारी काम है या निजी?
जी एक निजी काम है. क्या बताना होगा आपको?
नहीं, उसकी जरूरत नहीं है. रजिस्टर में अपना नाम और पता भर दीजिए.
संवाद पांच.
श्रीलंका के बल्लेबाज तिरिमाने पर भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में अंपायर के फैसले का विरोध जताने के लिए मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया है. तिरिमाने 62 रन बनाने के बाद भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की गेंद पर विकेट के पीछे रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट हो गए थे, लेकिन अंपायर द्वारा आउट घोषित कर दिए जाने के बावजूद लंबे समय तक क्रीज पर खड़े रहे और बाद में पवेलियन की ओर जाते समय निराशा में अपना सिर हिलाते हुए नजर आए.
संवाद छः.
नमस्कार बहन जी, कहाँ जाएगा ये पार्सल? कोई कीमती सामान तो नहीं है?
जी अमेरिका भेजना है. बस कुछ कागज हैं और एक पेन ड्राइव है.
पेन ड्राइव? वह तो समस्या बनेगा. इसकी तो खोलकर सुरक्षा जांच होगी.
लेकिन उसमें तो गोपनीय सामग्री है। किसी के पार्सल को आप खोल कैसे सकते हैं?
मैडम, ये कस्टम्स का नियम है, हमारा नहीं। यदि भेजना हो तो अपनी पहचान के 2 सबूत दे दीजिए और अपना मोबाइल नंबर बताइए।
ठीक है, जो होता है वो कीजिए।
अभ्यास 1 के इन संवादों को अब आप फिर से सुनेंगे।
संवाद 1।
यात्री कृपया ध्यान दें, जाने की दिशा में गाड़ी का पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है। पुरुष यात्रियों से अनुरोध है कि इसमें प्रवेश न करें, ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है। कृपया गाड़ी के फर्श पर न बैठें। अगला स्टॉप गांधीधाम है, दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरें।
संवाद 2।
विमला जी, आपने सविता को देखा है क्या?
भाई साहब, मजाक के मूड में हैं क्या? मैं तो सविता को बरसों से देखती आ रही हूँ। आप जानते हैं कि हम दोनों सहेलियां हैं।
इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी सहेली है कहाँ?
अंदर घर में होगी, अभी 20 मिनट पहले ही तो मैंने वहाँ छोड़ा है उसे।
घर में होती तो मैं आपसे पूछने क्यों आता?
अरे हाँ, मेरे जाने के बाद ऊपर के फ्लैट में माया के पास गई होगी, उनका नया टीवी देखने।
संवाद 3।
साथियों, आज हमें अवस्थी जी की पुस्तक का काम पूरा करना है। सारे काम छोड़कर सब इस पर लग जाए। राघव जी की टीम प्रूफ रीडिंग का काम देखेगी। रेणु जी, आप आवरण पृष्ठ का काम पूरा करा दें। अहमद साहब फुटनोट और संदर्भ सूची को तैयार करेंगे। हमारे पास शाम 5 बजे तक का समय है, क्योंकि अवस्थी जी छपाई के लिए तैयार पुस्तक देखने के लिए 6 बजे आ रहे हैं।
संवाद 4।
नमस्ते भाई साहब, नीलिमा जी से मिलना था।
समय ले रखा है आपने, क्या नाम है आपका?
जी रुचिका, 4 बजे का समय है, मेरे साथ मेरी एक सहेली भी है।
किस सिलसिले में मिलना है आपको, सरकारी काम है या निजी?
जी एक निजी काम है, क्या बताना होगा आपको?
नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, रजिस्टर में अपना नाम और पता भर दीजिए।
संवाद 5।
श्रीलंका के बल्लेबाज तिरिमाने पर भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में अंपायर के फैसले का विरोध जताने के लिए मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया गया है। तिरिमाने 62 रन बनाने के बाद भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की गेंद पर विकेट के पीछे रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट हो गए थे, लेकिन अंपायर द्वारा आउट घोषित कर दिए जाने के बावजूद लंबे समय तक क्रीज पर खड़े रहे और बाद में पवेलियन की ओर जाते समय निराशा में अपना सिर हिलाते हुए नजर आए।
संवाद 6।
नमस्कार बहन जी, कहाँ जाएगा ये पार्सल, कोई कीमती सामान तो नहीं है?
जी अमेरिका भेजना है, बस कुछ कागज हैं और एक पेन ड्राइव है।
पेन ड्राइव, वह तो समस्या बनेगा, इसकी तो खोलकर सुरक्षा जांच होगी।
लेकिन उसमें तो गोपनीय सामग्री है, किसी के पार्सल को आप खोल कैसे सकते हैं?
मैडम, ये कस्टम्स का नियम है, हमारा नहीं। यदि भेजना हो तो अपनी पहचान के 2 सबूत दे दीजिए और अपना मोबाइल नंबर बताइए।
ठीक है, जो होता है वो कीजिए।
यह अभ्यास एक का अंतिम संवाद था। थोड़ी देर में आप अभ्यास दो सुनेंगे। अब आप अभ्यास दो के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। अभ्यास दो, प्रश्न सात। जनहितकारी संगठन माया ऑर्गेनिक के निदेशक प्रताप हेगड़े से कन्नडिगा मंच की संयोजक जया राजन्ना की बातचीत को ध्यान से सुनिए और नीचे छोड़े गए खाली स्थानों को भरिए। ये बातचीत आपको दो बार सुनाई जाएगी।
प्रताप हेगड़े जी, कन्नडिगा मंच की ओर से आज की ग्राम चर्चा में आपका स्वागत है।
धन्यवाद जया जी।
प्रताप जी, आपकी संस्था कर्नाटक के छोटे से गांव से काठ के खिलौने बनवाकर दूर दूर के देशों में निर्यात करती है। जरा उस गांव के बारे में बताइए। उस गांव के खिलौनों में ऐसा क्या है जो उन्हें विदेशों में भी लोकप्रिय बनाता है?
इस गाँव की विशेषता यहाँ की महिलाओं की कारीगरी और लगन है। नील संद्रा नाम का यह गांव बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर चन्नपटना के पास पड़ता है। गांव छोटा सा है, लेकिन यहाँ घर घर में औरतें एक स्थानीय पेड़ की लकड़ी से खिलौने बनाती हैं, जिसे हाथी दांत लकड़ी कहा जाता है।
क्या खासियत है इन खिलौनों की और ये कब से बनाए जा रहे हैं?
जया जी, इन खिलौनों पर लाख का घोल चढ़ाकर इन्हें चटक कुदरती रंगों से रंगा जाता है, जिसकी वजह से ये शीशे की तरह चिकने और खूबसूरत लगते हैं। सुनते हैं कि करीब 200 साल पहले इस रियासत के शासक टीपू सुल्तान ने फारस में बने हाथी दांत के खिलौनों से प्रभावित होकर वहां से कुछ कारीगरों को बुलाया था। वे चन्नपटना में ही बस गए थे और उनसे कारीगरी सीखकर यहाँ के लोगों ने लकड़ी के खिलौने बनाना शुरू किया। वह परंपरा आज तक जारी है।
नील संद्रा के खिलौनों के कारोबार पर क्या चीनी खिलौनों का कोई असर नहीं पड़ा?
नहीं, बहुत बुरा असर पड़ा था। नील संद्रा का खिलौनों का कारोबार ठप हो गया था, लेकिन बंगलुरु में सॉफ्टवेयर उद्योग की क्रांति आने के बाद हमारी संस्था माया ऑर्गेनिक समेत कई इंटरनेट कंपनियों ने इन खिलौनों को बेचना शुरू किया, जिससे देश विदेश में इनकी मांग एक बार फिर बढ़ने लगी है। इनके निर्माण और डिजाइन को भी बेहतर बनाने के प्रयास किए गए हैं।
मसलन कैसे और क्या प्रयास किए गए हैं?
एक तो कारीगरों को आधुनिक मशीनों पर काम करने का प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वे कम समय में बड़ी संख्या में और बेहतर खिलौने बना सकें। साथ ही नए जमाने के हिसाब से नए नए डिजाइन के खिलौने बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। इसलिए अब यहाँ काठ की गुड़िया ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों और मशीनों के चाबी वाले खिलौने भी बनाए जाते हैं, जो चल फिर सकते हैं। खिलौनों के साथ साथ अब यहाँ काठ की दूसरी चीजें भी बनने लगी हैं।
नील संद्रा के खिलौने अब कहाँ कहाँ निर्यात हो रहे हैं?
जया जी, भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा अब नील संद्रा के 80% खिलौने जापान, यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और एशिया के उन देशों में अधिक बिकते हैं जहां चीन के प्लास्टिक के खिलौनों पर पाबंदियां हैं। इनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि राष्ट्रपति ओबामा ने भी इनमें दिलचस्पी दिखाई थी और इसलिए उनकी भारत यात्रा के दौरान उन्हें ये खिलौने भेंट किए गए थे।
अरे वाह, तब तो खिलौने बनाने वाली औरतों को बहुत फायदा हो रहा होगा।
बेशक, खिलौने बनाने वाली औरतों को औसतन 2 लाख रुपए सालाना की आमदनी हो रही है, जो पहले के दिनों के मुकाबले 7 गुना है। केंद्र सरकार ने भी नील संद्रा के खिलौना उद्योग को सम्मानित किया है।
प्रताप जी, नील संद्रा के काठ के खिलौनों की रोचक कहानी सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। अभ्यास दो की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे।
प्रताप हेगड़े जी, कनाडिगा मंच की ओर से आज की ग्राम चर्चा में आपका स्वागत है।
धन्यवाद जया जी।
प्रताप जी, आपकी संस्था कर्नाटक के छोटे से गांव से काठ के खिलौने बनवाकर दूर दूर के देशों में निर्यात करती है। जरा उस गांव के बारे में बताइए, उस गांव के खिलौनों में ऐसा क्या है जो उन्हें विदेशों में भी लोकप्रिय बनाता है?
इस गांव की विशेषता यहाँ की महिलाओं की कारीगरी और लगन है। नील संद्रा नाम का यह गांव बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर चन्नपटना के पास पड़ता है। गांव छोटा सा है, लेकिन यहाँ घर घर में औरतें एक स्थानीय पेड़ की लकड़ी से खिलौने बनाती हैं, जिसे हाथी दांत लकड़ी कहा जाता है।
क्या खासियत है इन खिलौनों की और ये कब से बनाए जा रहे हैं?
जया जी, इन खिलौनों पर लाख का घोल चढ़ाकर इन्हें चटक कुदरती रंगों से रंगा जाता है, जिसकी वजह से ये शीशे की तरह चिकने और खूबसूरत लगते हैं। सुनते हैं कि करीब 200 साल पहले इस रियासत के शासक टीपू सुल्तान ने फारस में बने हाथी दांत के खिलौनों से प्रभावित होकर वहां से कुछ कारीगरों को बुलाया था। वे चन्नपटना में ही बस गए थे और उनसे कारीगरी सीखकर यहां के लोगों ने लकड़ी के खिलौने बनाना शुरू किया। वह परंपरा आज तक जारी है।
नील संद्रा के खिलौनों के कारोबार पर क्या चीनी खिलौनों का कोई असर नहीं पड़ा?
नहीं, बहुत बुरा असर पड़ा था। नील संद्रा का खिलौनों का कारोबार ठप हो गया था, लेकिन बंगलुरु में सॉफ्टवेयर उद्योग की क्रांति आने के बाद हमारी संस्था माया ऑर्गेनिक समेत कई इंटरनेट कंपनियों ने इन खिलौनों को बेचना शुरू किया, जिससे देश विदेश में इनकी मांग एक बार फिर बढ़ने लगी है। इनके निर्माण और डिजाइन को भी बेहतर बनाने के प्रयास किए गए हैं।
मसलन कैसे और क्या प्रयास किए गए हैं?
एक तो कारीगरों को आधुनिक मशीनों पर काम करने का प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वे कम समय में बड़ी संख्या में और बेहतर खिलौने बना सकें। साथ ही नए जमाने के हिसाब से नए नए डिजाइन के खिलौने बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। इसलिए अब यहाँ काठ की गुड़िया ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों और मशीनों के चाबी वाले खिलौने भी बनाए जाते हैं, जो चल फिर सकते हैं। खिलौनों के साथ साथ अब यहाँ काठ की दूसरी चीजें भी बनने लगी हैं।
नील संद्रा के खिलौने अब कहाँ कहाँ निर्यात हो रहे हैं?
जया जी, भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा अब नील संद्रा के 80% खिलौने जापान, यूरोप, अमरीका, दक्षिण अफ्रीका और एशिया के उन देशों में अधिक बिकते हैं जहाँ चीन के प्लास्टिक के खिलौनों पर पाबंदियां हैं। इनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि राष्ट्रपति ओबामा ने भी इनमें दिलचस्पी दिखाई थी और इसलिए उनकी भारत यात्रा के दौरान उन्हें ये खिलौने भेंट किए गए थे।
अरे वाह, तब तो खिलौने बनाने वाली औरतों को बहुत फायदा हो रहा होगा।
बेशक, खिलौने बनाने वाली औरतों को औसतन 2 लाख रुपए सालाना की आमदनी हो रही है, जो पहले के दिनों के मुकाबले 7 गुना है। केंद्र सरकार ने भी नील संद्रा के खिलौना उद्योग को सम्मानित किया है।
प्रताप जी, नील संद्रा के काठ के खिलौनों की रोचक कहानी सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। अभ्यास दो अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास तीन सुनेंगे। अब आप अभ्यास तीन के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास तीन, प्रश्न 8 से 13। अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग की प्रवक्ता डॉ. जानकी राव के साथ कल की दुनिया के संपादक रवि अरविंदन की बातचीत को ध्यान से सुनिए और दिए गए प्रत्येक कथन को पढ़कर बताइए कि कथन सही है या गलत। अपना उत्तर उपयुक्त खाने में सही का निशान लगाकर दीजिए। यह बातचीत आपको दो बार सुनाई जाएगी।
डॉक्टर जानकी राव, कल की दुनिया के पाठकों की ओर से चर्चा में आपका स्वागत है।
धन्यवाद रवि जी।
डॉक्टर जानकी राव, हमने पढ़ा था कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर बस्ती बनाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अब सुनते हैं कि उससे पहले चंद्रमा पर कोई बस्ती बनाई जाएगी। क्या ये बातें सही हैं?
जी हाँ, बिल्कुल सही हैं। मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने के बारे में अमरीकी अंतरिक्ष संस्था नासा में विचार चल रहा है, लेकिन यूरोप की अंतरिक्ष संस्था ईसा के अध्यक्ष प्रोफेसर योहान डीथरिक वोर्नर का मानना है कि उससे पहले हमें चांद पर बस्ती बसानी चाहिए। मंगल की यात्रा के लिए भी चांद पर बस्ती बसाना जरूरी है।
कब तक बनेगी यह बस्ती और कैसी होगी?
प्रोफेसर वोर्नर का मानना है कि चांद पर बस्ती बनाने का काम 2024 तक शुरू हो जाएगा। यह अंतरिक्ष स्टेशन की जगह लेगी और देखने में टेलीटबीज कार्टूनों के घरों यानी इग्लों जैसी होगी। इसका नाम उन्होंने मूनविल रखा है।
क्या हम इसे धरती से देख सकेंगे?
नहीं, इसे चांद की पिछली सतह पर बनाने का प्रस्ताव है जो हमें दिखाई नहीं देती।
क्यों पिछली सतह पर? क्यों धरती से नजर आने वाली सतह पर क्यों नहीं?
वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए चांद की पिछली सतह बेहतर है, क्योंकि उस सतह से हम बिना किसी रुकावट के लगातार सुदूर अंतरिक्ष पर नजर रख सकते हैं।
मूनविल का काम शुरू कैसे किया जाएगा, क्योंकि हवा, पानी और ऊर्जा जैसी सारी बुनियादी चीजें हमें खुद ही बनानी होंगी?
जी, इसीलिए शुरुआत में निर्माण की सामग्री और भोजन बनाना हमारी प्राथमिकता होगी। बाद में चल के हाइड्रोजन से पानी बनाया जाएगा, जिससे ग्रीन हाउस में फसलें उगाई जाएंगी।
चांद की इस बस्ती तक आने जाने की क्या व्यवस्था होगी और लोग कितने समय तक वहां रह सकेंगे?
शुरुआत में तो वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष इंजीनियरों को ही भेजा जाएगा और वे कई कई महीने रह सकेंगे। चंद्र बस्ती तक आने जाने के लिए एक शटल का निर्माण किया जाएगा जो नियमित रूप से वहां तक आ जा सके। ऐसी किसी शटल का होना आपात स्थितियों से निपटने के लिए भी जरूरी है।
चंद्र बस्ती तक पहुंचने में कितना समय लगेगा जानकी जी?
चांद हमसे 2,30,000 मील की दूरी पर है। आज की तकनीक के हिसाब से इस दूरी को तय करने में लगभग 2 दिन लगेंगे।
इस बस्ती के लिए ऊर्जा कहां से आएगी?
चांद पर प्रचुर मात्रा में हीलियम-3 नाम की गैस है, जिसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग हो सकता है। धरती पर यह गैस नहीं पाई जाती, इसलिए चांद पर ऊर्जा की तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, पैसे की समस्या जरूर है। अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने में $10 करोड़ से अधिक का खर्च आता है। चंद्र बस्ती पर उससे कहीं अधिक खर्च होगा, जिसके लिए देशों को मिलकर काम करना होगा।
डॉक्टर जानकी राव, चंद्र बस्ती की योजना की रोचक जानकारी देने के लिए धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद।
अभ्यास तीन की यह बातचीत अब आप फिर से सुनेंगे। डॉक्टर जानकी राव, कल की दुनिया के पाठकों की ओर से चर्चा में आपका स्वागत है।
धन्यवाद रवि जी।
डॉक्टर जानकी राव, हमने पढ़ा था कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर बस्ती बनाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप सुनते हैं कि उससे पहले चंद्रमा पर कोई बस्ती बनाई जाएगी। क्या ये बातें सही हैं?
जी हाँ, बिल्कुल सही हैं। मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने के बारे में अमरीकी अंतरिक्ष संस्था नासा में विचार चल रहा है, लेकिन यूरोप की अंतरिक्ष संस्था ईसा के अध्यक्ष प्रोफेसर योहान दीथरिख वोर्नर का मानना है कि उससे पहले हमें चांद पर बस्ती बसानी चाहिए। मंगल की यात्रा के लिए भी चांद पर बस्ती बसाना जरूरी है।
कब तक बनेगी यह बस्ती और कैसी होगी?
प्रोफेसर वोर्नर का मानना है कि चांद पर बस्ती बनाने का काम 2024 तक शुरू हो जाएगा। यह अंतरिक्ष स्टेशन की जगह लेगी और देखने में टेलीटबीज कार्टूनों के घरों यानी इग्लुओं जैसी होगी। इसका नाम उन्होंने मूनविल रखा है।
क्या हम इसे धरती से देख सकेंगे?
नहीं, इसे चांद की पिछली सतह पर बनाने का प्रस्ताव है जो हमें दिखाई नहीं देती।
क्यों पिछली सतह पर? क्यों धरती से नजर आने वाली सतह पर क्यों नहीं?
वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए चांद की पिछली सतह बेहतर है, क्योंकि उस सतह से हम बिना किसी रुकावट के लगातार सुदूर अंतरिक्ष पर नजर रख सकते हैं।
मूनविल का काम शुरू कैसे किया जाएगा, क्योंकि हवा, पानी और ऊर्जा जैसी सारी बुनियादी चीजें हमें खुद ही बनानी होंगी?
जी, इसीलिए शुरुआत में निर्माण की सामग्री और भोजन बनाना हमारी प्राथमिकता होगी। बाद में चल के हाइड्रोजन से पानी बनाया जाएगा, जिससे ग्रीन हाउस में फसलें उगाई जाएंगी।
चांद की इस बस्ती तक आने जाने की क्या व्यवस्था होगी और लोग कितने समय तक वहां रह सकेंगे?
शुरुआत में तो वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष इंजीनियरों को ही भेजा जाएगा और वे कई कई महीने रह सकेंगे। चंद्र बस्ती तक आने जाने के लिए एक शटल का निर्माण किया जाएगा जो नियमित रूप से वहां तक आ जा सके। ऐसी किसी शटल का होना आपात स्थितियों से निपटने के लिए भी जरूरी है।
चंद्र बस्ती तक पहुंचने में कितना समय लगेगा जानकी जी?
चांद हमसे 2,30,000 मील की दूरी पर है। आज की तकनीक के हिसाब से इस दूरी को तय करने में लगभग 2 दिन लगेंगे।
इस बस्ती के लिए ऊर्जा कहां से आएगी?
चांद पर प्रचुर मात्रा में हीलियम-3 नाम की गैस है, जिसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग हो सकता है। धरती पर यह गैस नहीं पाई जाती, इसलिए चांद पर ऊर्जा की तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, पैसे की समस्या जरूर है। अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने में $10 करोड़ से अधिक का खर्च आता है। चंद्र बस्ती पर उससे कहीं अधिक खर्च होगा, जिसके लिए देशों को मिलकर काम करना होगा।
डॉक्टर जानकी राव, चंद्र बस्ती की योजना की रोचक जानकारी देने के लिए धन्यवाद।
आपका भी धन्यवाद।
अभ्यास 3 अब समाप्त हुआ। थोड़ी देर में आप अभ्यास 4 सुनेंगे। अब आप अभ्यास 4 के प्रश्नों पर ध्यान दीजिए।
अभ्यास 4, प्रश्न 14 से 20। जल की समस्या पर बिन पानी सब सून नाम के स्वयंसेवी संगठन के अध्यक्ष तीरथ राम पूनिया के विचारों को ध्यान से सुनिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये विचार आपको दो बार सुनाए जाएंगे।
नमस्कार, मैं हूं तीरथ राम पूनिया। विश्व जल दिवस के अवसर पर हिंदी के एक अखबार ने एक संदेश छापा था जिसे जनहित में जारी किया गया था, पैसों की तरह पानी न बहाएं, चूंकि पानी फिर पैसों से भी नहीं मिलेगा। संदेश का इशारा स्पष्ट रूप से तेजी से फैलते शहरों और उनके संपन्न वर्ग की ओर था, जहां पानी की खपत और बर्बादी खतरनाक तरीके से बढ़ती जा रही है। देहात के लोग तो पानी के इस्तेमाल के किफायती तौर तरीकों को आज भी जीवित रखे हुए हैं, इसलिए वे जब कुएं से जल खींचते हैं तो अपने बाल्टी और घड़े भर जाने के बाद बचे हुए पानी को वापस कुएं में ही डाल देते हैं ताकि पानी बर्बाद न हो। नहाने धोने और मवेशियों के लिए बरसात का पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह समझ शहरी संपन्न वर्ग में नहीं है। वे तो अपनी कार को नहलाने में या बगीचे की ऑस्ट्रेलियाई घास को सींचने में ही सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं। संपन्न घरों में और खासकर शहरों महानगरों के शौचालयों में झरनों फव्वारों से नहाने का चलन बहुत होता है, जिसमें पानी बदन पर कम और जमीन पर ज्यादा गिरता है। लोग तो दाढ़ी बनाते वक्त भी बेसिन का नल खुला छोड़ देते हैं ताकि बार बार रेजर धोने के लिए टोटी न उमेटनी पड़े, जिससे पानी बर्बाद होता है। कपड़े धोने की आधुनिक मशीनों के उपयोग में भी रोजाना सैकड़ों लीटर पानी खर्च होता है। यदि हम पानी बचाने के प्रति संवेदनशील हो जाएं, तो पानी के इस खर्च को कम किया जा सकता है। जैसे करोड़ों की संख्या में शौचालय बनाना देश की जरूरत है और उनके निर्माण पर तेजी से काम चल रहा है, लेकिन किसी का ध्यान इस बात पर नहीं जा रहा कि ऐसे शौचालय बनाए जाएं जिनमें कम से कम पानी खर्च हो। इससे एक तो कम गंदा पानी साफ करना पड़ेगा और पानी की किल्लत वाले इलाकों में शौचालय ज्यादा कामयाब होंगे। शहरों के सौंदर्यीकरण के नाम पर सड़क की दोनों ओर की घास, मिट्टी और कच्ची जमीन को पाटकर सड़कें चौड़ी करने और पक्की पगडंडियां बना देने से भी बारिश का पानी जमीन में नहीं समा पाता है और बहकर बर्बाद हो जाता है। वनों की अंधाधुंध कटाई, औद्योगीकरण और शहरीकरण तो गहराते जल संकट के प्रमुख कारण हैं ही। हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों में नलकूपों से सिंचाई के कारण भी भूजल का स्तर काफी नीचे गिर गया है। एक अनुमान के मुताबिक पानी की बर्बादी अगर इसी रफ्तार से चलती रही तो भारत में प्रति व्यक्ति पानी की मात्रा इस दशक के अंत तक घटकर आज की तुलना में केवल 2/3 रह जाएगी। यही नहीं, सन 2050 तक यह मात्रा और घटकर आज उपलब्ध पानी के मुकाबले केवल 5वें हिस्से जितनी ही रह जाएगी। यदि हम अभी से नहीं संभले तो मामला हाथ से निकल जाएगा। नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर देश में कई राज्यों के बीच पहले से ही विवाद चल रहा है। कहीं देश में पानी को लेकर लड़ाई छिड़ने की नौबत न आ जाए।
अभ्यास 4 के ये विचार अब आप फिर से सुनेंगे।
नमस्कार, मैं हूं तीरथ राम पूनिया। विश्व जल दिवस के अवसर पर हिंदी के एक अखबार ने एक संदेश छापा था जिसे जनहित में जारी किया गया था। पैसों की तरह पानी न बहाएं, चूंकि पानी फिर पैसों से भी नहीं मिलेगा। संदेश का इशारा स्पष्ट रूप से तेजी से फैलते शहरों और उनके संपन्न वर्ग की ओर था, जहां पानी की खपत और बर्बादी खतरनाक तरीके से बढ़ती जा रही है। देहात के लोग तो पानी के इस्तेमाल के किफायती तौर तरीकों को आज भी जीवित रखे हुए हैं, इसलिए वे जब कुएं से जल खींचते हैं तो अपने बाल्टी और घड़े भर जाने के बाद बचे हुए पानी को वापस कुएं में ही डाल देते हैं, ताकि पानी बर्बाद न हो। नहाने धोने और मवेशियों के लिए बरसात का पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह समझ शहरी संपन्न वर्ग में नहीं है। वे तो अपनी कार को नहलाने में या बगीचे की ऑस्ट्रेलियाई घास को सींचने में ही सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं। संपन्न घरों में और खासकर शहरों महानगरों के शौचालयों में झरनों फव्वारों से नहाने का चलन बहुत होता है, जिसमें पानी बदन पर कम और जमीन पर ज्यादा गिरता है। लोग तो दाढ़ी बनाते वक्त भी बेसिन का नल खुला छोड़ देते हैं, ताकि बार बार रेजर धोने के लिए टोंटी न उमेटनी पड़े, जिससे पानी बर्बाद होता है। कपड़े धोने की आधुनिक मशीनों के उपयोग में भी रोजाना सैकड़ों लीटर पानी खर्च होता है। यदि हम पानी बचाने के प्रति संवेदनशील हो जाएं, तो पानी के इस खर्च को कम किया जा सकता है। जैसे करोड़ों की संख्या में शौचालय बनाना देश की जरूरत है और उनके निर्माण पर तेजी से काम चल रहा है, लेकिन किसी का ध्यान इस बात पर नहीं जा रहा कि ऐसे शौचालय बनाए जाएं जिनमें कम से कम पानी खर्च हो। इससे एक तो कम गंदा पानी साफ करना पड़ेगा और पानी की किल्लत वाले इलाकों में शौचालय ज्यादा कामयाब होंगे। शहरों के सौंदर्यीकरण के नाम पर सड़क की दोनों ओर की घास, मिट्टी और कच्ची जमीन को पाटकर सड़कें चौड़ी करने और पक्की पगडंडियां बना देने से भी बारिश का पानी जमीन में नहीं समा पाता है और बहकर बर्बाद हो जाता है। वनों की अंधाधुंध कटाई, औद्योगीकरण और शहरीकरण तो गहराते जल संकट के प्रमुख कारण हैं ही। हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों में नलकूपों से सिंचाई के कारण भी भूजल का स्तर काफी नीचे गिर गया है। एक अनुमान के मुताबिक पानी की बर्बादी अगर इसी रफ्तार से चलती रही तो भारत में प्रति व्यक्ति पानी की मात्रा इस दशक के अंत तक घटकर आज की तुलना में केवल 2/3 रह जाएगी। यही नहीं, सन 2050 तक यह मात्रा और घटकर आज उपलब्ध पानी के मुकाबले केवल 1/5 जितनी ही रह जाएगी। यदि हम अभी से नहीं संभले तो मामला हाथ से निकल जाएगा। नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर देश में कई राज्यों के बीच पहले से ही विवाद चल रहा है। कहीं देश में पानी को लेकर लड़ाई छिड़ने की नौबत न आ जाए।
अभ्यास 4 और यह परीक्षा समाप्त हुई।
This is the end of the examination.